प्रयोगवाद। हिंदी कविता के पाठकों में प्रयोगवाद की चर्चा तार सप्तक कविता संग्रह 1943 ईस्वी से शुरू हुई। प्रतीक पत्रिका जुलाई 47 से 52 ईस्वी से उसे बल मिला और दूसरा सप्तक कविता संग्रह 1951 ईस्वी से उसकी स्थापना हुई। इसका मतलब यह नहीं है कि इस सब में जितनी कविताएं छपी सभी प्रयोगवाद है। कविताएं तो प्रतीक में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और नवीन से लेकर नागार्जुन, त्रिलोचन आदि तक की छपी और सप्तकों में भी रामविलास शर्मा तथा भवानी प्रसाद मिश्र को रखा गया है। लेकिन प्रयोगवाद संबंधी जो औसत धारणा बनी है वह इन सब के बावजूद केवल अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारतभूषण, शमशेर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि की रचनाओं के आधार पर। प्रयोगवाद का एक दूसरा पहलू बिहार के नरेंद्र विलोचन केसरी और नरेश के नकेनवादी प्रपद्यों द्वारा आया, जो अपनी समझ से अज्ञेय के और प्रयोगवाद का विरोध करते हुए भी वस्तुतः उसी की एक शाखा है। प्रयोगवाद नाम चलने के कारण तार सप्तक के संपादकीय तथा अन्य वक्तव्य हैं, इस संज्ञा के बीच वही है। उनमें प्रयोग और प्रयोगशीलता को साफ शब्दों में अपनी विशेषता कहा गया है। मालूम होता है पाठकों ने इस कविता के प्रयोग प्रयोग के लटके को पकड़ लिया और उनकी कविताओं को प्रयोगवाद नाम दे दिया। यह प्रयोग शब्द अंग्रेजी कविता में प्रचलित एक्सपेरिमेंट के ही वजन पर हिंदी में चला था, लेकिन हिंदी में जो प्रयोगवाद चल पड़ा उसके लिए अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंटलिज्म नामक कोई वाद नहीं है। इस पर हिंदी की रोमांटिक कविताओं के लिए अंग्रेजी रोमांटिसिज्म का ठीक ठाक अनुवाद न करके स्वतंत्र रूप से छायावाद संज्ञा दी गई, उसी तरह कविता में होने वाले नए प्रयत्नों को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। नामकरण प्रायः इसी तरह उचित अनुचित का ध्यान रखे बिना ही हो जाता है, इसलिए प्रयोगवाद नाम की सार्थकता निरर्थकता को लेकर बहस करना बेकार है। प्रयोगवाद नामक निरर्थक और अपर्याप्त होते हुए भी हिंदी साहित्य के इतिहास में अब स्थापित तथ्य है। इससे अब एक निश्चित काव्य प्रवृत्ति का बोध होता है, प्रचलन से इसमें पर्याप्त अर्थवत्ता आ गई है। प्रयोगवाद नाम के साथ जुड़े इस लोक प्रचलित अर्थ से बचने के लिए प्रयोगवादी कवियों ने अब इस नाम को छोड़ देने का नारा दिया है। इस बारे में उनका कहना है कि प्रयोग तो सभी काल के कवियों ने किए हैं, इसलिए हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। हिंदी कविता के पाठक जानते हैं कि छायावादी कवियों ने भी आत्मरक्षा के लिए वेद में भी छायावाद को ढूंढ निकाला और सिद्ध किया कि छायावाद का जन्म तो कविता के साथ ही हुआ है। वस्तुतः हर युग का बुद्धिजीवी अपने युग के सत्य को युग युग के सनातन और शाश्वत सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता है और इसी सामान्यीकरण में उसकी बौद्धिकता निहित है। इधर प्रयोगवादी कविताओं के लिए नई कविता का नाम प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन नया विशेषण से नवजीवन की जिस ताजगी का बोध होता है वह इन कविताओं में नहीं है। इनका नयापन केवल पूर्ववर्ती कविताओं से भिन्नता में ही है और हर युग की कविता अपने पूर्ववर्ती युग से कुछ न कुछ भिन्न अथवा नई होती है, इसलिए नई कविता नाम में अतिव्याप्ति दोष है। प्रयोगवाद में कुछ लोगों का अभिप्राय केवल रूपवाद अथवा फॉर्मलिज्म है, लेकिन रूपवाद प्रयोगवाद की एक शाखा मात्र है। सभी प्रयोगवादी कवि केवल रूप विधान तथा टेक्निक पर ही ध्यान नहीं देते, ऐसे कवि और ऐसी रूपवादी कविताएं थोड़ी हैं। प्रयोगवाद कोरे रूपवाद से अधिक व्यापक प्रवृत्ति तथा विचारधारा का वाहक है, जिसमें थोड़े थोड़े से अंतर के साथ अनेक रहस्योन्मुखी मध्यवर्गीय मनोवृत्तियों और विचारधाराओं का समावेश हो गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ाव है। प्रयोगवाद यदि केवल शिल्पगत प्रयोग की प्रवृत्ति नहीं है तो फिर इसके मूल में कौन सी जीवन दृष्टि है? दूसरे शब्दों में प्रयोग का दर्शन क्या है? वाद के विरुद्ध विद्रोह प्रयोगशील कवियों की पहली विशेषता है। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने साफ कहा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं न ही हैं। सामान्यतः इसका अर्थ केवल साहित्यिक वाद का निषेध समझा जाता है, लेकिन वाद का विरोध करते हुए प्रयोगशील कवि राजनीतिक या दार्शनिक किसी भी बात का निषेध करते हैं। वाद अर्थात मतवाद या सिस्टम। प्रयोगशील कवि यह मानते हैं कि किसी बात को मानने से व्यक्तिगत एवं स्वतंत्र विचार में बाधा पड़ती है, क्योंकि विचार की दृष्टि से वाद की एक तरह की बंद विचार प्रणाली है। प्रयोगशील दृष्टि का सूत्रपात ही इस धारणा से हुआ कि पूर्व निश्चित कोई भी वाद सत्य तक पहुंचने या पहुंचाने में समर्थ नहीं है। यदि वाद विरोध बहुत कुछ 19वीं सदी के उत्तरार्ध के यूरोपीय चिंतन की उस घटना की तरह है जिसमें हीगल के सुदृढ़ एवं विराट सिस्टम के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह करने वालों में एक ओर किर्केगोर्ड, शोपेनहावर और नीत्शे जैसे व्यक्तिवादी विचारक थे तो दूसरी ओर मार्क्स, एंगेल्स जैसे सामाजिक चिंतक भी थे। दार्शनिक सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह की व्यापक लहर यूरोप में दूसरे महायुद्ध के बाद भी फैली, जिसका आभास अस्तित्ववाद की लोकप्रियता से चल सकता है। कुछ लोगों को यह बात विचित्र लग सकती है कि यदि वाद के विरुद्ध विद्रोह प्रयोगशील जीवन दृष्टि की पहली विशेषता है तो अपने को मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट कहलाने वाले कवियों ने प्रयोगशीलता का पथ कैसे अपनाया। एक वाद को मानते हुए वाद या सिस्टम का क्या मतलब हो सकता है? इसका उत्तर तो यही हो सकता है कि मार्क्सवाद स्वयं विचार के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सिस्टम बिल्डिंग या वाद निर्माण का विरोधी है, इसीलिए मार्क्सवादी इस विचारधारा को दर्शन न कहकर विज्ञान कहते हैं, जो वस्तुतः गाइड टू एक्शन है। संभव है कि आरंभ में इस विश्वास के कारण मार्क्सवादी एवं गैर मार्क्सवादी कवि एक बुनियाद पर स्थित हुए हों, किंतु प्रयोगवाद के परिवर्तित इतिहास से स्पष्ट है कि प्रयोग के दौरान जिन्हें मार्क्सवाद और प्रयोगशीलता में विरोध दिखाई पड़ा उन्होंने दो में से एक को छोड़ दिया। अधिकांश ने प्रयोग के लिए मार्क्सवाद को छोड़ दिया। प्रयोगशील जीवन दृष्टि की दूसरी विशेषता है कि सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। जहाँ किसी पूर्व निश्चित वाद से बचने की कोशिश है वहाँ सत्य का निरंतर अन्वेषण अनिवार्य हो जाता है, और जाहिर है कि यह अन्वेषण हर एक को स्वयं करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। विज्ञान में जिसे ट्रायल एंड एरर पद्धति कहते हैं, जीवन तथा साहित्य में प्रयोगशील कवि उसी को आदर्श मानते हैं। कोशिश करना और गलती होने पर उससे सबक लेकर फिर कोशिश करना, यही है जीवन के साथ प्रयोग। इस जीवन दृष्टि के अनुसार सारा जीवन प्रयोगों का एक सिलसिला है। इस मामले में गांधी जी के दर्शन को प्रत्यक्ष रूप से न मानते हुए भी अनजाने ही प्रयोगशील कवि गांधी जी के सत्य के प्रयोग सदृश विचार रखते थे। गांधी जी और प्रयोगशील कवियों के सत्य में अंतर हो सकता है, किंतु सैद्धांतिक रूप से गांधी जी की तरह वे भी सत्य को बहुत आंतरिक मानते थे, और इस अंतः सत्य की उपलब्धि के लिए उन्हीं की तरह ये कवि भी बुद्ध की अपेक्षा अनुभव को प्रधानता देते थे। विचित्र बात है कि विज्ञान के साथ संबंध देखकर प्रयोग को कविता के क्षेत्र में बौद्धिकता का आंदोलन कहना शुरू किया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रयोगशीलता नितांत अनुभव परक जीवन दृष्टि है। जो लोग विज्ञान दर्शन के कुछ यूरोपीय विचारकों से परिचित हैं उन्हें इस बात पर आश्चर्य न होगा कि वे विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए भी विचारों में बुद्ध विरोधी एवं अनुभववादी अथवा रहस्यवादी हैं। प्रयोगवाद के साथ ही प्रयोगशील कवियों ने प्रायः साहस और जोखिम का भी जिक्र किया। अज्ञेय ने प्रयोगशील कवि की उपमा मोती खोजने वाले गोताखोर से दी है, जो सत्य को प्राप्त करने के लिए समुद्र की अतल गहराई में जाने का जोखिम उठाता है। यह कथन इसलिए ध्यान देना योग्य है कि स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भाग लेने वाले एवं स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक विचार को मानने वाले कवियों ने भी कभी अपने साहस और जोखिम की ऐसी घोषणा नहीं की। इससे पता चलता है कि प्रयोग का पथ बड़े जोखिम का है। सवाल यह है कि यह जोखिम और साहस क्या है? स्वयं प्रयोगशील कवियों ने इसकी व्याख्या नहीं की है, न सिद्धांत में और न व्यवहार में। वैसे नितांत निजी अनुभव के सहारे सत्य की खोज करना सचमुच ही साहस का कार्य कहा जाएगा, और इस प्रक्रिया में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के साथ ही भी नित्य नए प्रयोग करे तो जान जोखिम में पड़ सकती है। वस्तुतः प्रयोगकर्ता के साथ एक अनिवार्य शर्त यह भी है कि किसी सत्य की परीक्षा के लिए स्वयं उसे जीना चाहिए, और जाहिर है कि सत्य के जीते चलने की प्रतिक्रिया काफी दुस्साध्य है। जर्मन दार्शनिक नीचे ने भी प्रयोग को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया था। उसने बार बार जर्मन शब्द वर्सच का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी पर्याय एक्सपेरिमेंट होता है, और हिंदी के प्रयोगशील कवि जिस अर्थ में जीवन को प्रयोग मानते हैं, लगभग उसी अर्थ में नीचे भी जीवन को प्रयोग मानता था। उसका भी यह कहना था कि विचार के क्षेत्र में नए नए प्रयोग का साहस होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं कि प्रयोगों में एक सुसंबद्ध अनुक्रम हो, प्रयोगों का क्रम विच्छिन्न होता है, क्योंकि हर प्रयोग अपने आप में नया है और हर शुरुआत नई शुरुआत है। नीचे का दावा था कि मौका पड़ने पर अपने ही पूर्ववर्ती विचारों के विरुद्ध घोषणा करने का साहस होना चाहिए। जोखिम के साथ जियो, लिव डेंजरसली, नीचे का यही नारा था। अपने आचार के द्वारा विचारों की सत्यता परखने के व्रत को उसने इतनी दूर तक निभाया कि पागल होकर मरा। सिस्टम का विरोध उसने इतनी कट्टरता से किया कि स्वयं अपने विचारों में भी कोई सिस्टम या व्यवस्था नहीं आने दी। उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जराथुस्त्रवाच बिखरे सूत्रों और विचार स्फुलिंगों का संग्रह है। पता नहीं प्रयोग और अन्वेषण का व्रत लेते समय प्रयोगशील कवियों के सामने निश्चित विचार कहाँ तक थे, किंतु तीसरा शतक के कवि के 25 शील वाले वक्तव्य से स्पष्ट है कि प्रयोग का सिलसिला आगे चलकर निश्चय तक अवश्य पहुँच गया। परवर्ती कवियों ने हर तरह की विचारधारा का तिरस्कार किया, यहाँ तक कि पूरी भीड़ एक प्रकार से अराजनीतिक हो उठी। विचार मिथ्या प्रतीत होने लगे, भावनाएं भावुकता मालूम होने लगे, इंद्रिय बोध अथवा संवेदन ही वास्तविक प्रतीत हुए। परिणाम इंद्रिय बोध की प्रतिक्रिया प्रकट करने वाली कविताएं सुख के क्षणों में मादक उन्माद और दुख के क्षणों में अंध विद्रोह अथवा निरुद्देश्य निराशा। आगे चलकर जो क्षणवादी विचारों की व्यापक उद्घोषणाएं हुई, आरंभिक प्रयोगशील जीवन दृष्टि का ही बढ़ाव समझना चाहिए। कहना न होगा कि जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता है, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो गया। यह विडम्बना ही है कि जिस वाद का विरोध प्रयोगशील कवियों ने किया, वही प्रयोग के दौरान प्रयोगवाद बनकर स्थिर हो गया। निसंदेह अंत तक अपनी अनुभववादी प्रकृति के कारण वह एक व्यवस्थित एवं सुसंगत विचार प्रणाली का रूप कहीं ग्रहण कर सका। परंतु एक बात अवश्य हुई कि आगे चलकर प्रयोगशील जीवन दृष्टि को काव्य के क्षेत्र में एक व्यवस्थित काव्य सिद्धांत बनाने के प्रयत्न होने लगे। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने इस काव्य सिद्धांत का सूत्रपात करते हुए कहा कि इनोटेड कामा, प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि वह तो एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषण की प्रक्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। ये नोटेड कामा बंद। सामान्यतः यह समझा जाता है कि कवि अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ही भाषा को समर्थ बनाता है। ऐसा कहने वाले प्रायः यह मानकर चलते हैं कि भाव या विचार किसी अन्य साधन से प्राप्त किए जा सकते हैं, और एक तरह से उन्हें प्राप्त करने के लिए कवि को विशेष श्रम भी नहीं करना पड़ता, किंतु उन्हें व्यक्त करने के लिए काव्यगत दूसरे साधनों का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत प्रयोगशील कवि की धारणा यह है कि भाषा के ही माध्यम से नए सत्य का अन्वेषण भी किया जाता है और भाषा के ही माध्यम से उसे काव्य का रूप भी दिया जाता है। इस प्रकार काव्य शिल्प जानने और व्यक्त करने दोनों ही का माध्यम है। प्रयोगशीलता इसी अर्थ में काव्य के वस्तु और शिल्प दोनों ही का प्रयोग है। कहना ना होगा कि हिंदी काव्य शास्त्र के इतिहास में यह एक नई काव्य दृष्टि थी। आगे चलकर सौंदर्य बोध की परंपरा में के संदर्भ में प्रयोग की व्याख्या करते हुए रघुवीर सहाय ने कुछ और बातें स्पष्ट की। सीढ़ियों पर धूप संग्रह में के अंतर्गत उन्होंने लिखा है, इनोटेड कामा, प्रयोग जिस अन्वेषण की उपज है वह सामाजिक यथार्थ, नई सामाजिक चेतना, नए मानव संबंध, नए काव्य तत्व के लिए नए छंद, भाषा आदि में किसी भी धरातल पर नहीं होता। ये कार्य क्षेत्र है। रचना क्षेत्र एक और ही धरातल है, जहाँ एक संपृक्त बुद्धिजीवी व्यक्ति में अत्यंत मौलिक एवं अत्यंत चिरंतन कुछ आंतरिक तत्व काम करते हैं। वे तत्व क्या हैं, अपने से ऊपर उठ जाने की इच्छा। यूनिट कहाँ पर? रघुवीर सहाय के अनुसार अपने व्यक्तित्व की खोज भी प्रयोग नहीं है। यूनिट कामा कला की अपनी सौंदर्य परंपरा में कवि द्वारा इन कलात्मक अनुभव के क्षणों का रखना ही प्रयोग है। यूनिट कामा बल अंततः प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। इस प्रकार प्रयोगशीलता क्रमशः अनेक प्रयोगों के बाद सूक्ष्म कलात्मक अनुभव के क्षण तक पहुंची। प्रयोग के साथ प्रायः सफलता का नाम लिया गया। प्रयोगशील कवियों का आग्रह रहा कि सफल प्रयोग ही वस्तुतः प्रयोग है। असफल प्रयोगों को एक प्रकार का प्रयास कहा जा सकता है। जाहिर है कि जहाँ सफलता ही सत्य के प्रयोग की कसौटी होगी, वहाँ जीवन दृष्टि नितांत व्यवहारवादी होगी। और दर्शन के अध्येता जानते हैं कि व्यवहारवाद से सत्य की प्राप्ति असंभव है। वस्तुतः यह तो एक काम चलाओ नुस्खा है। जो कारगर हो वह सत्य है। यदि यह मान लिया जाए तो फिर जादू टोना झाड़ फूक तंत्र मंत्र सभी सत्य साबित हो। कहना न होगा कि सफलता को सत्य के प्रयोग की कसौटी मानने वाले प्रयोगशील कवियों को एक तरह से हिंदी जगत में काफ़ी सफलता मिली। प्रयोगवाद के 15 वर्षों का इतिहास व्यक्तिवाद के 2 सीमांतों के बीच फैला हुआ है। इनमें से एक सीमांत है मध्यवर्गीय परिवेश के प्रति मध्यवर्गीय कवि का वैयक्तिक असंतोष और दूसरा सीमांत है जनजागरण से डरे हुए कवि की आत्मरक्षा की भावना। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है और विभिन्न राजनैतिक नैतिक सामाजिक मान्यताओं के रूप में यह संकीर्ण व्यक्तिवाद अपने को व्यक्त करता रहता है। वस्तुतः इस सदी के शुरू शुरू में जिस मध्य वर्ग ने आत्मशोध तथा आत्मविकास के लिए साहित्य कला और संस्कृति संबंधी जो नवीन अभियान किया था, वही अपनी वैयक्तिक प्रवृत्ति के कारण क्रमशः समाज विरोधी हो उठा और इस सदी का पूर्वार्ध समाप्त होते न होते हार कर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ही मजबूर हो गया। छायावाद के साथ उसका गौरवशाली आरंभ हुआ और अब प्रयोगवाद में उसका दयनीय पर्यावसन हो रहा है। किसी समय जो व्यक्ति केंद्र असीम के विराट वृत्त के रूप में आत्मविकास कर रहा था, अब वह केवल केंद्र के रूप में ही सिमट कर अपने बचाव का उपाय सोचने लगा था। जिस औद्योगिक विकास ने मध्यवर्ग को जन्म दिया और मध्यवर्ग में भी बुद्धिजीवी संवेदनशील कवि को जिसने नवीन शिक्षा तथा ज्ञान के द्वारा प्रकृति और समाज को देखने परखने की अंतर्दृष्टि दी और धीरे धीरे संपूर्ण समाज में निर्मम आर्थिक संबंधों की स्थापना कर दी और स्वयं मध्यवर्ग के भीतर बढ़ते हुए श्रम विभाजन के कारण अनेक स्तर बन गए जिनमें कवि की स्थिति सबसे अधिक दयनीय हो उठी। ऐसे स्तर भेद वाले बाजारू समाज की कठोर वास्तविकताओं ने छायावादी कवि की भावुकता का सारा रस सुखा दिया और साथ ही उसके आकाशगामी कल्पना पंख को भी तोड़ डाला। सूर्य को छूने के लिए जो संपाती चला था, उसके पंख उस तरह असहज ज्वाला से जल गए और वह पक्षी अंत में धरती पर उतरने के लिए विवश हो गया। उसकी स्थिति ग्रीक पुराणों के आइसकेरस की सी थी, जिसने उड़ान तो ऊंची भरी किंतु उसे पता नहीं था कि उसके पंख मोम के हैं। फलतः वास्तविकता के तीव्र ताप में वे मोमी पंख पिघल गए और अवंचित आइकेरस को नीचे गिरना पड़ा। इत्तलम के आरंभ के अज्ञे ने फ्रांसीसी कवि वाटलेयर की आइकेरस का विलाप से अनुलिखित उद्धरण देकर मध्यवर्गीय कवि की इसी विवशता की ओर संकेत किया है। किंतु मेरी भुजाएं टूट गई हैं क्योंकि मैंने उसकी परिधि में मेघों को बांध लेना चाहा। निसंदेह मध्यवर्गीय कवि की कल्पना के पंख मोम के ही थे और यह वर्ग अपने कवि को इसी तरह धोखा देता आया है, परंतु वास्तविकता यह है कि 36 के आसपास तक यह आइकेरस अथवा संपाती आकाशचित होकर एकदम धरती पर नहीं आ गिरा था, जैसा कि अज्ञेय के तत्कालीन निबंध संग्रह के त्रिशंकु नाम से विदित होता है। तब तक वह मध्यवर्ग की कवि अधर में ही लटका हुआ था। उस समय वह अपनी मध्यवर्ग की प्रवृत्ति से संघर्ष करता हुआ फिर से ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील था। पहले तो कवि ने अपनी सामाजिक अनुपयोगिता के विरुद्ध अपनी उपयोगिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। ऊंचे व्यवसायियों, राजकर्मचारियों, डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों आदि के परम उपयोगी समाज के बीच उसने कविता की उपयोगिता और उसके साथ ही अपनी उपयोगिता तथा महत्व प्रमाणित करना चाहा, परंतु इसमें सफलता न मिलने पर दोषप्रद सामाजिक प्रवृत्ति के लिए मांग आरंभ की। अपने मन के अनुकूल सामाजिक प्रवृत्ति के अभाव में जिन कवियों में घर की याद के दोहरित का स्वभाव दिखाई पड़ा उसकी उसने आलोचना की। एकांत संगीत वाले बच्चन के विकराल आर्द्रनाद को पलायनवाद कहकर उसे अनुचित बतलाया। जैनेन्द्र के अबुद्धिवाद को आधुनिक बौद्धिक उलझन से पलायन का परिणाम तथा एक पुरानी अधिक सरल आयासहीन जीवनचर्या की ओर जाने की चेष्टा से अनुप्राणित ठहराया और यह भी दिखलाया कि इन सब की तर्कसंगत परिणति मृत्यु उपासना का वह भाव है जिसमें मृत्यु का चिरनिद्रा अथवा मुक्ति रूप में आह्वान और स्वागत किया जाता है। इन सभी पलायनवादी प्रवृत्तियों का विरोध करके आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और जुजुत्सु भाव का नारा दिया, लेकिन उसमें प्रतिरोध और जुजुत्सु भाव की सीमा थी। उसकी जुजुत्सा संघर्ष एवं विद्रोह में नहीं बल्कि केवल पीड़ा बोध में थी। अपनी जुजुत्सा को स्पष्ट करने के लिए अज्ञेय ने श्री रामचरण गुप्त की कविता उद्धृत की है जिसका निष्कर्ष इस प्रकार है। तुझे होगा जो पीड़ा बोध वही तेरे पथ ऋण का शोध। इस तरह वह अचेतना और मृत्युपासना के विपरीत पीड़ा बोध और संपन्न जागरूकता का हिमायती है, लेकिन उसकी जागरूकता की भी सीमा है। वह अधिक से अधिक अनुभूति और परिस्थिति के कार्य कारण परंपरा जोड़ने की वृत्ति है। दूसरे शब्द में यह जागरूक कवि अपनी अनुभूतियों के सामाजिक कारणों को भी जानने की जिज्ञासा रखता है और इसी कारण विश्लेषण के द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दुखी और सुखी की कोई अत्यंतिक श्रेणियां तो जीवन में है नहीं। दुख, अपूर्णता, पीड़ा ये सर्वव्यापी है, गरीबों ने इनका ठेका नहीं लिया है। यह निष्कर्ष मध्यवर्गीय कवि को सोचने के लिए विवश करता है कि क्यों न हम दोनों वर्ग से ऊपर उठकर संपूर्ण मानवता के लिए गान गाएं। अपने वर्ग के धनी मानी और प्रतिष्ठित लोग निर्धन कवि को अपने बीच सम्मान देते नहीं और किसान मजदूरों के बीच उतर कर सम्मानित होना उसके लिए हेठी है। न वह उनका गीत गा सकता है न इनका। त्रिशंकु स्थिति इसी को कहते हैं। इसीलिए वह इन सबसे परे रहकर काल्पनिक निष्पक्षता का व्रत लेता है, लेकिन धीरे धीरे इस निष्पक्षता का भी व्रत टूटता है और वह अंत में अपनी मंशा साफ साफ इन शब्दों में प्रकट करता है कि वह परिस्थिति के भीतर ही अपने लिए एक संतोषजनक परिवृत्ति गढ़ सकता है। यह परिस्थिति और कुछ नहीं है, वस्तुतः वह मध्यवर्गीय परिवृत्ति ही है। इस कवि की सारी जागरूकता यही सिखाती है कि किसी नवीन समाज व्यवस्था में ही किसी तरह दिल बहलाने की चेष्टा करनी चाहिए, या तो वह समाज व्यवस्था थोड़ी और भी लचीली होकर कवि के अनुकूल हो जाए अथवा स्वयं कवि ही थोड़ा सा और झुककर उस समाज व्यवस्था के अनुकूल हो जाए। दूसरे शब्दों में किसी प्रकार निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ अच्छी हो जाए, वह सेठों की तरह धनी भले न हो परंतु स्वतः समर्थ अवश्य हो जाए। मतलब यह कि किसान मजदूर चूल्हे भाड़ में जाए, निम्न मध्यवर्ग का या बुद्धिजीवी व्यक्ति कुछ और ऊंचे चढ़ जाए। इस तरह इस विद्रोही कवि का उच्च मध्यवर्ग तथा उसकी समाज व्यवस्था के प्रति सारा असंतोष और युद्ध भाव अंत में इस प्रस्ताव पर खत्म हुआ कि से संरक्षण प्राप्त हो। केवल इस टुकड़े पर उच्च मध्यवर्ग का सारा अत्याचार और अपनी सारी पीड़ा बुलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस बार फिर मध्यवर्गीय कवि को धोखा हुआ, मोह भंग उसका फिर हुआ। उसकी एक एकाकी याचना की ओर मध्यवर्ग ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उसने अपने को सर्वथा निःसहाय अनुभव किया। उसने अपने को विस्थापित, निघरा, निजड़ा तथा उजड़ा हुआ अनुभव किया। कालक्रम से अज्ञेय ने घोषित किया कि यह निघरापन या निजड़ापन नए लेखक की पहली समस्या है। इस निजड़ापन को अज्ञेय ने नदी के द्वीप प्रतीक से व्यक्त किया है, जिसमें कवि का व्यक्ति मध्यवर्गीय भूखंड से निर्मित किंतु विलग उस द्वीप के समान है जिसे जनजीवन की स्रोत स्विनी निरंतर डुबाती, उखाड़ती, बहाती और फिर थोड़ी देर के लिए स्थापित करती चल रही है। मध्यवर्गीय परिवेश से सामाजिक रूप से में कटकर भी मानसिक रूप से वह कवि उसके मोह को छोड़ने में जितना असमर्थ है उतना ही असमर्थ जनजीवन के साथ तदाकार होने में भी है। फलतः इस प्लावन के सम्मुख उसका स्थिर समर्पण है। इस स्थिर समर्पण में भी वैयक्तिक ऐंठ निहित है। इस प्लावन की शक्ति से परिचित होते हुए भी मध्यवर्गीय कवि को विश्वास है कि उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में अवश्य सुरक्षित रहेगा। उसकी धारणा है कि नारियल चीलम एक एक करके सब कुछ बदल जाने पर भी हुक्का वही रहेगा। इस तरह त्रिशंकु के प्रतिरोध, असंतोष और सक्रिय जागरूकता से गिरते गिरते प्रयोगवाद नदी के द्वीप के स्थिर समर्पण, एकाकीपन और निष्क्रिय परितृप्ति में डूब गया। उसने दुख को गौरवान्वित करके उसे फलसफा का रूप दे दिया। वह दार्शनिक सूत्र यह है कि दुख सबको मांझता है और चाहे वह सबको मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। दुख के शोधक और मुक्तिदायक रूप को के शिखर काल से ही मानते आ रहे हैं, लेकिन उस समय ज्ञ का विचार था कि दुख उसी की आत्मा के शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है, और इसीलिए उस समय वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दर्द से बड़ा विश्वास है। लेकिन नदी के द्वीप की स्थिति आते आते उससे दुख को दूर करने की भावना भी चली गई और विश्वास भी उठ गया। अब वह नदी के द्वीप तक आते आते सोचता है कि दर्द तभी तक क्लेशकर होता है जब तक हम उससे लड़ते हैं, जब तक हम अपनेपन को बनाए रखना चाहते हैं। विलास के आगे अपने को समर्पित कर देने के बाद सब क्लेश मानो झर जाते हैं। इस समर्पण के बाद उसे अब व्यापक सामाजिक दर्द की अनुभूति भी नहीं होती, अब उसे केवल प्यार का दर्द होता है। अब उसके लिए प्यार, दर्द, सत्य सभी पर्याय हो जाते हैं और फिर ये सभी हो जाते हैं अज्ञेय। अनुभूति और विचार के इस दशा पर पहुंचकर सब किस्सा खत्म। जिस कवि ने किसी समय यह लिखा था, तुम्हारा यह उद्धत विद्रोही घिरा हुआ है जग से, पर है सदा अलग निर्मोही। जीवन सागर हर हर कर उसे लीलने आता दुर्धर, पर वह बढ़ता ही जाएगा लहरों पर आरोही। विश्वास इत्यलम। और जिसने अपने आतताई परिवेश को ललकारते हुए चुनौती दी, ठहर ठहर आतताई जरा सुन ले, मेरे क्रुद्ध वीर की पुकार आज सुन जा, जनावान इत्यलम। इसी उद्धत विद्रोह ने कुछ समय बाद उस काल में अनुभव किया कि मैं ही हूँ वह पदाक्रांत रिड़ियाता कुत्ता, मैं ही वह मीनार शिखर का पार्थिव मुल्ला, मैं वह छप्पर तल का अहलीन शिशु भिक्षु, और हाँ निश्चय मैं वह तारक युग अपलक द्युति, अनथक गति बद्ध नियति, जो पार किए जा रहा नील मरु प्रणाम्भर नभ का, उषा काल की भविशांति इत्यलम। और फिर कैरा के निराशा भरे शब्द में भरे स्वर में सुनाते हुए इलियट की यह कविता पढ़ी। आई सेड टू माई सोल बी स्टिल एंड वेट विदाउट होप, बिना आशा बिना प्रेम और बिना विश्वास के चिर प्रतीक्षा करते रहना, क्योंकि आशा प्रेम विश्वास सभी प्रतीक्षा में है, नैराश्य और अनास्था की चरम अवस्था है। इस नैराश्य और अनास्था के मूल में अहमवाद है, इसे भी कवि पहचानता है और आत्मसमीक्षा के क्षणों में स्वीकार करता है। अहम अंतर गुहावास है, स्वरति क्या मैं चिन्हता कोई न दूजी राह, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह। परंतु धीरे धीरे यह बोध भी क्षीण हो जाता है और कवि अपने अहम अंतर गुहावास और स्वरति का औचित्य प्रमाणित करते हुए नदी के द्वीप की युक्ति देता है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपने नियति है। यदि ऐसा कभी हो यह स्रोत वाहिनी है ही, कर्मनाशा कृतिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टिकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। प्रयोगवाद के दोनों सीमांतों को जिस तरह की कविताएं छूती हैं, उस तरह संभवतः अन्य प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं नहीं छूती। अन्य कवियों ने सीमांतों के बीच कहीं न कहीं स्थित हैं। इसके साथ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अज्ञेय की ही तरह सभी प्रयोगवादी कवियों ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सैद्धांतिक रूप नहीं दिया। प्रयोगवाद के आरंभिक युग में जब अज्ञेय मध्यवर्गीय प्रवृत्ति के विरुद्ध वैयक्तिक असंतोष उगल रहे थे, नैमिष चंद्र, गजानन, मुक्तिबोध और भारत भूषण काव्य क्षेत्र में आए। आज्ञा की तरह इन कवियों में भी घोर असंतोष था, किंतु आज्ञा के विपरीत इन कवियों ने अपने मुक्ति के लिए नवीन जन आंदोलन से तादात्म्य स्थापित करने की आकांक्षा भी थी। इसलिए इन कवियों में आज्ञा के असंतोष से थोड़ा भिन्न एक नए ढंग की कश्मकश दिखाई पड़ती है। यह कश्मकश है संस्कार और विवेक की, आत्मस्थ होने की चाह को, असमर्थता को विवेक द्वारा चौड़ डालने की कश्मकश। नेमी और मुक्तिबोध में यह कश्मकश अधिक तीव्र तथा मार्मिक है। इन दोनों कवियों में भी मुक्तिबोध में सक्रिय जीव शक्ति और अधिक है। प्रयोगवाद के विकास क्रम में कुछ दिनों बाद शमशेर और काफ़ी दिनों बाद रघुवीर सहाय आए। नेमी और मुक्तिबोध वाला अंतर्द्वंद इन दोनों कवियों में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन जहाँ रघुवीर सहाय में यदि इस अंतर्द्वंद के फलस्वरूप मर्म स्पर्श दर्द और शक्ति अर्जित करने की वास्तविक आकांक्षा अधिक है, तो शमशेर में यह अंतर्द्वंद स्पष्टतः विभाजित दो व्यक्तित्वों के रूप में स्थायी बन गया है, जिसमें अपने अपने ढंग से जनवादी और वैयक्तिक दो प्रकार की भावनाएं कविता का रूप ले लिया करती हैं। निस्संदेह एक कोरे कर्तव्य पालन के रूप में और दूसरी अनुभूति प्रवणता के रूप में। प्रयोगवाद के अंतिम दिनों में भारती सर्वेश्वर जैसे भावुक कवि आए, जिनके जन आंदोलन भीरु मन को नदी के द्वीप वाला फलसफा कवच की तरह मिल गया। कम्युनिस्ट नेतृत्व से आतंकित होने के कारण इनके मन में अपनी निजता के ग्रस्त जाने की ऐसी काल्पनिक आशंका है कि ये अनजाने ही निरंतर अनास्था, शंका, निराशा और फिर भी मिथ्या आत्मविश्वास के गीत गाते चले जा रहे हैं। सर्वेश्वर जब घास काटने की मशीन के खतरे बतलाते हैं और भारती अनुलिखित शंका उठाते हैं, तो करुण स्वर में नदी के द्वीप का ही भाष्य करते हैं। जिस दिन उसकी हर आस्था तिनके से टूटे, जिस दिन अपने अंतरम के विश्वास सभी निकले झूठे, उस दिन होंगे वे कौन चरण जिनमें इस लक्ष्य भ्रष्ट मन को मिल पाएगी अंत में शरण। हमको कुछ ऐसा लगता प्रभु, ऐसे कोई भी नहीं चरण जिसमें मिल पाए हमें शरण। तुम में केवल निष्क्रिय पथ हो, चलना तो हमको ही होगा, चलने में ही हम टूटो और अधूरों का शायद होगा कुछ नया गठन, आश्रय देंगे हमको अपने जर्जर पर अपराजेय चरण। सूत्र और वृत्ति में जो अंतर होता है वही यहाँ भी है। आगे के नदी के द्वीप को अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है जितना इस शंका कुल लक्ष्य भ्रष्ट जर्जर चरण को है, और इस आस्थाहीन आत्मविश्वास के खोखलेपन का यही सबूत है कि न तो यह अनास्था अनुभूत है और न यह आत्मविश्वास वास्तविक है। भारती की अधिकांश कविताएं जिस राग रंग से बनी ठनी आती हैं, उन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि शंका के बातें वे केवल अवसर के तकाजे से ऊपरी मन से करते हैं। फिर भी प्रयोगवाद के इतिहास के इस मनोवृत्ति का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि इससे कुछ परवर्ती प्रयोगवादियों के अनुभूतिहीन अनुकरणशील प्रवृत्ति का पता चलता है। प्रयोगवादी कवियों में प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार दो ऐसे कवि हैं जिनकी विचारधारा स्पष्ट नहीं है, अथवा कम से कम जिन्होंने अपनी अनुभूति को निश्चित विचार प्रणाली का रूप नहीं दिया है। दर्शन शास्त्र के विज्ञापित विद्यार्थी प्रभाकर माचवे के लिए इस तरह की बात थोड़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन है अक्षरशः सत्य। इसका कारण प्रभाकर माचवे के उद्धृत कोलरिज के इस कथन से में है कि गहरी भावनाएं गहरे विचार की कोंख से जन्मती हैं, और माचवे में न तो गहरी भावनाएं हैं और न गहरे विचार। वे अपने भावों के प्रति कतई सीरियस नहीं हैं, इसलिए उनके पद्यात्मक प्रयत्नों को शुद्ध रूपवाद कहा जा सकता है। लेकिन गिरिजा कुमार के लिए यही बात नहीं कही जा सकती। सफल रूपवाद और अनिश्चित विचार प्रणाली के बावजूद गिरिजा कुमार की थकान और रूप रस रंग की इंद्रिय तृप्ति के पीछे संक्रांत युग के मध्यवर्गीय कवि के निश्चित मनोवृत्ति का पता चलता है। गिरिजा कुमार के विषय में रघुवीर सहाय का यह कथन युक्त संगत प्रतीत होता है कि विषय की अपेक्षा टेक्निक में रुचि अधिक रही है। उसके इस स्वकथन पर हमें पूरा विश्वास तो नहीं होता, परंतु विषय के प्रति उनकी संवेदना में टेक्निक विषय का एक अनिवार्य अंग बनकर आती है, और फिर उस दशा में भी चट्टाने, धुंधले पथ, धुएं की रेखाएं, खडहर, टाइफाइड और फिर पानी भरे बादल, केसर शशि, तन दीप्ति दीप्ति, आंचल, अदम मसलेगात और कुवार की उजरी धूप सब एक विवश संघर्ष और उपलब्धि की छाया ही तो हैं। इस तरह गिरजा कुमार की यह थकान और रुग्ण रोमानियत भी परोक्ष रूप से उसी व्यक्तिवाद से परिचालित है, इसमें जीवन की उलझनों से बचकर रंगीन दिवा स्वप्नों में दिल बहलाने की प्रवृत्ति जगती है। यही यह भी समझ लेना चाहिए कि प्रयोगवादी कवियों में सच्चे अर्थों में रूपवादी प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार तथा शमशेर ही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इनकी सारी रचनाएं रूपवादी हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि चित्रकला, रेखांकन तथा ध्वनि चित्रों से प्रेम होने के कारण कविता में केवल रूप विधि का भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अभ्यास किया है। इस रूपवादी मनोवृत्ति का भी दूर तक विश्लेषण किया जाए तो पता चलेगा कि इसके मूल में भी वही चरम व्यक्तिवाद है जो सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति के मन में एक प्रकार की नॉन सीरियस, गैर जिम्मेदारी और उदासीन रुख अख्तियार करवाता है, और जिसके फलस्वरूप कवि सामयिक समस्याओं से एकदम बचकर उन सब की सर्वथा उपेक्षा करके केवल काव्य रूपों और शिल्पों में निरुद्देश भाव से अपने को उलझाए रहता है। यह भी एक प्रकार का पलायन ही है। अक्सर देखा गया है चित्रकला और कविता में रूपवाद उसी समय आया है जब मध्य वर्ग रासन्मुख हुआ है। प्रयोगवाद का उदय ही मोहभंग डिर एजुलनमेंट से हुआ, इसीलिए इसमें छायावादी कल्पनाशीलता के विपरीत यथार्थवाद का आग्रह अधिक था। कल्पना के द्वारा छायावाद ने जिन वस्तुओं को दात रूप दे रखा था उसकी क्षुद्रता के उद्घाटन में प्रयोगवादी कवि को विशेष प्रकार का आनंद मिलने लगा। उदाहरण के लिए छायावादी कवि ने जहाँ चांदनी का बड़ा भव्य चित्र खड़ा किया था, वहाँ प्रयोगवादी कवि ने शिशिर की राह का निशा के वास्तविकता इस प्रकार चित्रित की है। वंचना है चांदनी, झूठ व आकाश का निर्वधि गहन विस्तार, शिशिर की राह का निशा के शांति है निस्सार। दूर व सब शांति व सित भव्यता व शून्य के अवलेप का प्रस्तार, इधर केवल झिल मिलाते चेत हर दुर्धर कुहासे की हलाहल स्निग्ध मुट्ठी में, सिहरते से पंग टुंडे नग्न बच्चे दई मारे पेड़। इसमें आगे चलकर बांस की टूटी हुई हड्डी, लटकती एक खम्भे की भटी सी उड़ने की चिंदियां दो चार, और मूत्र सिंचित मुक्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव गधा भी है। अज्ञे द्वारा चित्रित यह राह का निशा छायावादी कल्पना मुक्त संस्कार को ठेस पहुंचाने के साथ ही रंगीन आवरण के भीतर छिपी हुई क्रूरता का पर्दाफाश करती है। छायावादी कवि प्रायः कविता के मोहक पृष्ठभूमि में अथवा सुंदर प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से नारी की छाया प्रतिमा निर्मित करते रहे, लेकिन प्रयोगवादी कवि ने यहाँ भी अप्सरामय नारी को स्वप्न स्थित गरिमामय पद से उतारते हुए सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया, और इस तरह नारी सौंदर्य के उपमान वे स्वभावतः पदच्युत हो गए। आगे का ही सावन में एक भूमि के कंपित उरुजों पर झुकासा विशद श्वासाहत चिरातुर दिखलाई पड़ रहा है, और उनकी धरती भी स्नेह से आलिप्त बीज के भवितव्य से उत्फुल्ल बद्ध वासना के पंख से फैली हुई थी, सत्य सी निर्लज्ज नंगी और समर्पित। प्रकृति और नारी के प्रति प्रयोगवाद का यह आरंभिक दृष्टिकोण यथार्थ के नाम पर वस्तुतः नग्न यथार्थवाद अथवा नेचुरलिज्म है। काल्पनिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया में यथार्थवाद प्राय शुरू में भी ऐसा नग्न रूप लेता है। इस उच्छृंखलता के मूल में व्यक्तिवाद की ही अराजक मनोवृत्ति है। इसी मनोवृत्ति के फलस्वरूप छायावाद का छुई मुहिसा प्रेम अब मांसल रूप में प्रकट होने लगा। जहाँ पहले यह सिद्धांत था कि सौंदर्य केवल देखने की वस्तु है, छूने की नहीं, वहाँ प्रयोगवादी कवि ने उसे एकदम छूने की परिधि में खींच लिया। बादलों को देखकर इतने स्पष्ट स्वर में छायावादी कवि ने नारी को शायद ही कभी पुकारा हो। आह, मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। इस मुखरता के मूल में प्रयोगवादी कवि दमित वासना का वार बतलाते हैं। इसमें शक नहीं कि शुरू में नई शिक्षा के द्वारा मध्यवर्गीय पुरुष ने नारी को पुराने सामंती बंधनों से मुक्त किया, किंतु यह मुक्ति केवल भावात्मक ही रह गई। आर्थिक और सामाजिक रूप से फिर भी नारी पराधीन ही रही। इसके फलस्वरूप मध्यवर्गीय अव्यवस्था में स्वस्थ मानवता के धरातल पर मुक्त नारी पुरुष का मिलन संपन्न हो सका। वास्तविक मिलन के अभाव में आरंभ का भावात्मक और आदर्शात्मक मिलन निराधार होकर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की मानसिक ग्रंथियों की सृष्टि करने लगा और अप्राप्त नारी की भूख पड़ गई। यथार्थवादी दृष्टि के आने से यह भूख अत्यंत नग्न और अश्लील रूप में व्यक्त होने लगी। कविता के इस तरह का दुस्साहस बहुत कम लोगों ने किया, लेकिन उस समय उपन्यास कहानियों ने नरोत्तम नागर, अमृतलाल नागर, सर्वदानंद वर्मा, ऋषभ चरण जैन आदि ने इस तरह के श्रृंखलताएँ खूब व्यक्त की। कविता में भी इस नग्न यौन भावना की अभिव्यक्ति प्रायः प्रतीकात्मक ढंग से भी हुई, और जब ये प्रतीक अत्यंत स्पष्ट हो गया तो उनकी स्पष्टता से घबराकर कवि सहसा चुप हो गया। ऐसी स्थिति में लोचनों का भाव संकुल, व्यंजना का भीड़, पटाशा सडील सा विस्फार विशेष रहा। इसलिए अनेक कवियों ने व्यंजना भीर लोचन का यह विस्फार भी नहीं होने दिया, वे इस विषय में प्रायः चुप ही रहे। इस यथार्थवादी दृष्टि ने काव्य में उपेक्षित अनेक प्राकृतिक वस्तुओं, यंत्रों आदि को भी काव्य में स्थान दिया। कुछ तो केवल प्रतिक्रियावश और कुछ केवल शौकवश। एक ओर उसने गोयठों के गंधमय अंबर को दाखिल किया, दूसरी ओर कंक्रीट के पोर्च, पांव में हकलाती चप्पल, सायरन, रेडियम घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम क्रोशिश, चा की प्याली वगैरह की ओर ध्यान दिया। नरेश मेहता ने समय देवता में इस तरह के भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक अनेक चीजों की लंबी फहरिस्त पेश कर दी है। लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात, प्रसाद जी ने यथार्थवाद का जो केंद्र बिंदु कहा है वह इन तथ्यों को लक्ष्य करके, जिनमें एक ओर प्रकृति तथा वस्तु जगत की लघु वस्तुओं की ओर कवि का ध्यान जाए, दूसरी ओर मानव जगत में भी लघु और क्षुद्र प्राणियों का चित्रण हो। प्रयोगवाद ने मानव जगत की लघु जीवा की ओर ध्यान उतना ध्यान नहीं दिया जितना प्रकृति और यंत्र जगत की लघु वस्तुओं की ओर। गंभीर समझी जाने वाली वस्तुओं और मान्यताओं के प्रति हल्का ढंग और हल्की समझे जाने वाली चीजों और बातों के प्रति गंभीर रूप, ये दोनों यथार्थवाद के दो पहलू हैं। प्रयोगवाद में ये दोनों बातें मिलेंगी। एक ओर उसने छायावादी आदर्शों की खिल्ली उड़ाई है, दूसरी ओर गर्म पकौड़ी और चाय के प्याली को कौरवान्वित किया है। यथार्थवादी दृष्टि पर आए भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करती है। जिस प्रकार छायावाद के आरंभिक दिनों में कैशोर भावुकता एक प्रकार की अलंकृति थी और उसे कवि कर्म का बीज मंत्र माना जाता था, उसी तरह प्रयोगवाद के आरंभ काल में भावुकता मूर्खता का पर्याय हो गई। कवि अपने तथा परिवेश के विषय में इतना सतर्क हो गया कि हर जगह अपौद्धिकता और रक्षात्मक कवच के साथ आने का अभ्यस्त हो चला। हर बात में उसे रेशनलाइजेशन की आदत पड़ गई। आओ बैठो, क्षण भर तुम्हें निहारो, झिझक न हो कि निरखना तभी वासना की विकृति है। चलो उठे, अब तक हम थे बंधु सैर को आए, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे उधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हो भी तो उस हरी घास ही जाने। हरी घास पर क्षण भर की अनुभूति लिखते समय संभवता के छायावादी कवि भावुकतावश भावनाओं में बह जाता, लेकिन यहाँ अज्ञे ने बौद्धिक ढंग से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रयोगवादी कवि में यह बौद्धिकता आरोपित नहीं है, बल्कि सामाजिक दबाव का सहज परिणाम है। छायावादी कवि ने सामाजिक भय से अपने मानवीय प्रेम को रहस्यात्मक जामा पहनाया, तो प्रयोगवादी कवि ने उसे बौद्धिकता के आवरण में रखा। लोग जो आरोप करते हैं उसे स्वयं ही कहकर कवि ने लोगों को अपनी साहसिकता और निर्भीकता से जैसे हतप्रभ कर दिया। ईमानदारी का मूल मंत्र समझाते हुए इसी बौद्धिकता की व्याख्या आगे इस प्रकार करते हैं, जैसे जैसे हमारी बौद्धिक सहानुभूति गहरी होगी अभिव्यक्ति में व्यंजना आती जाएगी, वह सीधा संवेदन कम होता जाएगा जो किशोर कविता में होता है। यहाँ तक लेखक का संबंध है। ईमानदारी का मतलब यही है कि वह उस बौद्धिक विकलता को लेकर जिए और उसे अस्वीकार न करे। जो ज्ञान उसे दे जाता है और जो उसकी अनुभूति को सुधार जाती है। इनोटर कामवर। दरअसल इस संक्रांत युग में भी जो कवि मध्यवर्गीय मनस्थिति को लेकर भावुकता से भरी हुई अनेक सफल कविताएं लिख लेते हैं, उनके बारे में यह समझना चाहिए कि या तो वे वास्तविकता का अति सरलीकरण करते हैं, अथवा वे उसकी उलझनों से घबरा कर ऊपरी सतह की रंगीनियों में रस लेते हैं। गिरिजा कुमार की रसिकता बहुत कुछ ऐसी ही है। भवानी प्रसाद मिश्र की मस्ती और सरसता का स्वांग वस्तुतः जटिलता से बचने का उपक्रम है। जिनके यहाँ पड़ जाए जहाँ पर पाँव वहीं पथ है और शायद सब पथ ठीक है, इन्हीं के दिखा देखी सुमन इस तरह लिखते हैं गोया उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है। और कुछ कवि इन झंझटों से बचने के लिए शुद्ध प्रकृति चित्रण करते हैं अथवा लोकगीत लिखते हैं। इस बौद्धिकता के परिणाम स्वरूप प्रयोगवादी कवि के प्रतीकों और उपमानों में भी छायावाद कैशोर भावुकता का बहिष्कार करते दिखाई पड़ता है। पूर्ववर्ती समस्त उपमानों को छोड़कर वह अपनी प्रिया को बाजरे की कलगी से उपमित करते हुए कहता है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नबकी अकेली तार का अब नहीं कहता, यह शरद की भोर की निहाय न्यायी कुई टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला था कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है। केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। और इसी स्वर में स्वर मिलाकर एकदम नवोदित कवि भी सोचता है कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों से लिखे क्यों दिखें, हम लिखेंगे चांदनी उस रूप ऐसी है कि जिसमें चमक है पर खनक गायब है। यह बौद्धिकता का दूसरा छोर है। यथार्थ के आग्रह से कोरी भावुकता और सरलता को छोड़ना एक बात है, लेकिन भावप्रवणता को एकदम तिलांजलि देकर हर समय शुष्क वैदिक बौद्धिक व्यायाम करते रहना बिल्कुल दूसरी बात है। इससे यथार्थ दर्शन की जाए एक दूसरे प्रकार की अवास्तविकता की सृष्टि होती है। जहाँ यह बौद्धिक विकलता रचनात्मक रूप ग्रहण करती है, प्रायः अंतर जगत और बाह्य जगत के अत्यंत सूक्ष्म अस्तरों को परखने और अभिव्यक्त करने की अंतर्दृष्टि देती है। एक मानसिक विषाद को ही ले, छायावादी कवियों में भी प्रायः एक प्रकार के अस्पष्ट किंतु अनुभव गम्य विषाद की मनोस्थिति का चित्रण मिलता है। और इसके बाद की कविताओं में भी नरेंद्र जब कहते हैं कि साँझ होती होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी, तो यह अनजान से लगने वाली उदासी छायावादी विषाद से कुछ अधिक गहन और विविध सूक्ष्म अर्थ छायाओं से बुनी हुई है। लेकिन जब गिरजा कुमार कुवार की सुनहरी धूप की उदासी चित्रित करते हैं तो उससे कहीं अधिक गहनता और अर्थ छायाओं का पता चलता है। घरों में सुनसान आलस ऊंघता है, थकी राहें ठहर कर विश्राम करती, रिक्त कमरे की उदासी बढ़ रही है दूस से आते स्वरों से, अथवा दिनांत की उदासी का यह चित्र। बादल ढकी रात आती है, धूल भरे दीपक की लौ पर मंद पगधर, गीली राहें धीरे धीरे सूनी होती, जिस पर भूझिल पहियों के लंबे निशान है, माथे पर की सोच भरी रेखाओं जैसे, पानी रंगी दीवालों पर सोने राह की छाया पड़ती, पैरों के धीमे स्वर मर जाते हैं अनजाने उदास दूरी में। इन चित्रों और शब्दों की ध्वनि से मन पर जो सामूहिक प्रभाव पड़ता है वह केवल प्रिय की याद जनित उदासी नहीं है, बल्कि उसमें जीवन के अनेक अभाव घुले मिले हैं। और इन सबसे भी अधिक गाढ़तर विषाद की वह मनस्थिति है जिसे शमशेर एक लुढ़की सुराही के प्रतीक में व्यक्त करते हैं। लुढ़की सुराही तो हुचुक हुचुक पानी ढुरा, गर्द भरे खुदे हुए फर्श पर चुपचाप, देख देख कर मन कैसा हुआ, मेरी सुराही थी मेरी असावधान ठोकर में पड़ी, गट्ट गट्ट हुचक रही थी, एक सांस रोक पढ़ा सीधा करने अपना मुदा हुआ पात्र पर, सुबह सुबह पहला जो मन का विषाद वह कहाँ ढका गया। गनीमत है कि सुराही टूट नहीं गई, अन्यथा कविता के आर्थिक व्याख्याता सीधे सीधे कह देती कि यह सारा विषाद तीन आने की सुराही टूटने का परिणाम है बस। लेकिन गर्द भरे खुदे हुए फर्श पर औंधे मुंह पड़ी उचक उचक कर जल वमन करती हुई सुराही ने कवि के मन में कौन सा मानवीय चित्र आंक दिया, उसे समझकर उसकी अनुभूति का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह प्रिय की याद में न जाने कब से कविताएं लिखी जा रही हैं, लेकिन जब प्रयोगवादी कवि याद में पराजय का अनुभव करता है तो याद की एक विशिष्ट मनस्थिति आंकता है। भोर वेला नदी तट घंटियों का नाद, चोट खाकर जग उठा सोया हुआ अवसान। नहीं मुझको नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूँ मैं पराजय है तुम्हारी याद। अज्ञेय जैसा एक दर्द का अभिमानी कभी भी इस पराजय की विकलता का अनुभव कर सकता है। प्यार में भावुक कवियों के लिए आंसू बहाना आसान है, लेकिन अभिमानी हृदय से आंसू भी नहीं निकल पाते। प्यार में अभिमान की पर पसक ही रोने नहीं देती। प्रयोगवादी कवि चेतना पर किसी संज्ञा का अनवरत सूक्ष्म स्पंदन भी अनुभव करता है, इसलिए वह व्यक्ति मन के अनेक सूक्ष्म भावों का चित्रण अत्यंत सफलता के साथ कर जाता है। रघुवीर सहाय जब भावाकुल हृदय की अभिव्यक्ति के लिए विकलता को इन शब्दों में प्रकट करते हैं, सिनेमा के रीलों से कस के लिपटा है सभी कुछ मेरे अंदर, कमानी खुलने की भरती हुमस। तभी अपनी विकलता के लिए एक चौंकाने वाली उपमा भर नहीं देते, बल्कि उस उपमा के सहारे अपने मानसिक कसवकाहट को अधिक सूक्ष्मता से व्यक्त करते हैं। इसी तरह नैमित चंद्र अपने उचटे हृदय को सायरन के बाद की शून्यता के सहारे व्यक्त करते हैं, तो नवीन परिस्थितियों में से उत्पन्न हुई मनोस्थिति का सूक्ष्म चित्र आंकते हैं। आज उचटा सा हृदय सायरन बच जाए उसके बाद, निर्जन शून्य सड़कों सा निभृत निसंग खाली, फिर तथा की स्यासी बेमाप चादर से अभी जो ढक गया हो शून्य जी का प्रांत।